Arpa Radio Exclusive Interviews.
अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM में मैं हूँ संगीता अग्रवाल। आज अपने श्रोताओं को लिए चलते हैं नदियों के संगम स्थल राजिम की ओर और मिलते हैं सूबेदार मेजर गोवर्धन शर्मा जी से। राजिम से ताल्लुक रखने वाले गोवर्धन जी आज हमारे साथ हैं। जय हिंद मेजर साहब।
हाँ, जय हिंद।
हमारी अर्पा टीम की ओर से आपका सादर अभिनंदन है।
मैं अर्पा टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनका भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ मैं कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस भारतीय सेना को एक इज्जत बख्शी। थैंक यू मैम।
सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने आर्मी ज्वाइन करने का कैसे सोचा, क्या परिवार से आपको प्रोत्साहन मिला?
मैम, एक्चुअली जब सन 86-87 के दौरान मैंने एक एनसीसी कैंप ज्वाइन किया था सागर में और मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर रहा उस समय का। तो वहाँ एक एनके शर्मा सर थे, डीडी शर्मा सर, आरबी शर्मा सर, ये सब मेरे प्रेरणा स्रोत रहे और एक एनसीसी के रावत साहब थे जो हमारे को ट्रेन करने आते थे। तो जब मैं उनकी वर्दी को देखता था और उनकी वर्दी में जो मेडल वगैरह लगे रहते थे, उनका डेकोरेशन देख के मुझे सेना में जाने का एक बहुत क्रेज हो गया था उसी समय से।
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है।
जी,
आप इतने साल से किन किन स्थानों पे आपने काम किया है?
मैडम, मैंने ट्रेनिंग बटालियन मेरी नंबर 2 ट्रेनिंग बटालियन बैंगलोर में रही है। बैंगलोर से मेरी पोस्टिंग बटालिक सेक्टर में हुई 510 में। आफ्टर देन मैं चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से जोधपुर गया, जोधपुर से पूना, गैंगटोक, देहरादून, बाड़ी ब्राह्मणा, उसके बाद तवांग धवांग के बाद नशीराबाद, पटियाला, रांची, लेह लद्दाख, गुवाहाटी, 17 जगहों को मैंने अपनी सर्विस दी। मैं इसके दौरान मैं भूटान भी गया, फॉरेन सर्विस में भी गया। कई सब जगहों पर रहते हुए मैंने सेना को बहुत करीब से देखा है। सेना के रंग ढंग, वातावरण, सेना का एटमोसफियर इतना ज्यादा अच्छा रहता है कि मतलब आदमी लालायित रहता है। और समय 34 साल मेरा आर्मी के अंदर, समय कितनी जल्दी बीता, कितनी जल्दी गुजरा, मुझे एक सपना सा लगता है।
अरे वाह, तो आप रिटायरमेंट के बाद फिर अब क्या कर रहे हैं?
मैम, एक्चुअली जब मैं रिटायर हुआ था मार्च 2021 में, तो उस टाइम कोरोना का काल था और यहाँ हर जगह अव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था भी अपनी भारत की ये थी, हर जगह अराजकता थी, बीमारी का प्रकोप था। तो उस समय मैंने देखा कि फौज से आने के बाद सिविल में देखा कि हर लोग मतलब इससे प्रभावित थे, सब डिप्रेशन में जा चुके थे। तो मैंने अपने आप में एक सोचा कि मैं लोगों को कैसे डिप्रेशन से निकालूं, और मैंने लोगों को कुछ योगा की ट्रेनिंग दी। सुबह मैं फर्स्ट एड, जैसे मैं आर्मी में फर्स्ट एड करता था, मैं फर्स्ट एड में जाता था, लोगों को उत्साहित करता था, आप मास्क लगाइए और अपनी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखिए ताकि आपसे बीमारी आपसे दूर रहे। इन सब बातों को मैंने लोगों के बीच में प्रचारित किया, लोगों को समझाया, फोन में बात की और सोशल गैदरिंग से दूर रहने के लिए लोगों को बताया, और घर पे रह के कैसे, जैसे आपकी छत है, बालकनी है और अपनी एक वॉच ले लीजिए आपके मोबाइल में ट्रैकर, उसके थ्रू आप अपने कम से कम मिनिमम आप एक डिसाइड कीजिए कि मेरे को आज 8000 कदम चलना है, 10000 कदम चलना है, 15000 कदम चलना है, और अपनी आप फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखिए। रिटायरमेंट होने के बाद में मैंने यहाँ पर एक नवचेतना ग्रुप है नवापारा राजीव में, उसके तत्वाधान में मेरे को एक ऑफर मिला था और मैंने उनके जो लोगों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो एक नवचेतना ग्रुप के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं सागर शर्मा, तो उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। एक हमारा रायपुर में आर्मी फाउंडेशन वेलफेयर है, उनके जो अध्यक्ष हैं मिस्टर दिनेश शर्मा, भी आर्मी से रिटायर हैं, उनसे भी मुझे अच्छा प्रोत्साहन मिला। उन सब ने मेरे बोला, सर एक आप एक एकेडमी खोलिए। तो ये बचपन से मैं भी ये सोचता था, जब मैं आर्मी में था तब भी मैं सोचता था कि मैं सिविल में जाकर अपने क्षेत्र के लड़कों को प्रोत्साहित करूंगा डिफेंस में जाने के लिए, पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, नेवी और सीआरपीएफ, मतलब बेल्ट की सर्विस के लिए मैं लोगों को मतलब जागरूक करना चाहता था। शुरू से बचपन से मैं यही चाहता था कि हमारे क्षेत्र के लोग जाए। जब मैं सन 87-88 में जब सेना में ज्वाइन करने का सोचता था, तो मैं एक अकेला पूरे तहसील में एक अकेला आर्मी मैन था, फौजी था जो मैं आर्मी में गया था। उस जमाने में लोग ये सोचते कि आर्मी में लोग सिर्फ मरने के लिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्मी एक इतनी अच्छी संस्था है कि आपका इतना अच्छा वेलफेयर करती है, इतना अच्छा लुकआफ्टर करती है, जितनी जैसे कि एक माँ अपने बच्चों का लुकआफ्टर करती है, वैसे एक आर्मी एक यंग चैप का लुकआफ्टर करती है और उसको हर फैसिलिटी से वो करती है, हर फैसिलिटी आर्मी के द्वारा उसको दी जाती है जवान को, ऑफिसर को। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को एक आर्मी, हर अपने बच्चे को एक आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एक यंग युवा को एक आर्मी ज्वाइन करना चाहिए।
बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अनुशासन मूल मंत्र है आपके जॉब का, ये डिसिप्लिन आप ये समाज के लोगों के लिए कितना जरूरी है, क्या सोचते हैं इस बारे में?
मैं जब भी छुट्टी आता था रिटायरमेंट के बाद, आने के बाद, मैं सिविल लाइफ और आर्मी लाइफ में कंपेरिजन करता हूँ तो मुझे बड़ा सा एक एम्बरेस फील होता है, थोड़ा सा दुख महसूस होता है। कारण क्या है कि यहाँ पर अनुशासन कई लोगों में तो बहुत अच्छा है और कई लोगों में बिल्कुल नहीं है। कहीं भी मतलब जस्ट लाइक आर्मी के अंदर एक पेड़ को भी रिस्पेक्ट दी जाती है, एक जो पेड़ होता है उसको भी हम चूना और गेरू से उसको हम डेकोरेट करते हैं, उसकी बल्ली बनाते हैं, प्रॉपर उसको सुबह शाम पानी देते हैं। मतलब हर चीज का एक डिसिप्लिन है, पूरी जो आर्मी की जो रोड है, आर्मी की जो कॉलोनियां है बिल्कुल साफ सुथरी। यहाँ लोगों को देखता हूँ कि लोगों के अंदर मतलब डिसिप्लिन कम है, जिसको जागरूक करने की कोशिश है। जैसे कोई गुटखा खा लिया, पान खा लिया, कोई कचरा है, कोई डस्टबिन है, कोई पोलिथीन है, पानी की बोतल से पानी को यूज किया और उसके अवशेष को जस्ट लाइक प्लास्टिक की बोतलों को दाएं बाएं डिस्ट्रॉय कर दिया, फेंक दिया, तो ये सब डिसिप्लिन नहीं आता। डिसिप्लिन की परिभाषा के अंदर आता है एक पर्सनल टर्न आउट होता है, ड्रेस कोड होता है, आप चाहे सिविल ड्रेस पहने चाहे वर्दी पहने, इन करके पहनना है, उसका एक वीरिंग कोड होता है। तो लोगों के अंदर वो नहीं है, कुछ भी पहन के निकल गए, कहीं भी चले गए, कहीं भी आ गए, कहीं भी आप हाथ धो लिए, कहीं भी आप थूक दिए, कहीं भी डस्टबिन के बिना कचरे को आप डाल दिए, ये सब डिसिप्लिन के दायरे में आता है, जो कि यहाँ पर मुझे सिविल के अंदर ये देखने में एक और सा लगता है,
खराब लगता है। जी, और ये वो लोग हैं जो जानते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं।
बस 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 जी मैम जी, ये लोगों को सब पता है, अवेयरनेस है, सब जानते हैं मगर जानबूझ कर ये करते हैं। लोगों को ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये शहर हमारा है, ये गांव हमारा है, ये घर हमारा। लोगों को जागरूक रहना चाहिए इस विषय में।
आपको सह सेना अध्यक्ष के द्वारा प्रशंसा पत्र भी मिला है।
हाँ जी मैम, सैनी साहब हमारे जो सेना अध्यक्ष थे, वाइस चीफ थे, तो 2021 में मैं दिल्ली में पोस्ट था सफदरगंज मेरी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ एक जनरल विपिन रावंत साहब की जो मेन साहब ने एक सेना दल का प्लांट लगाया था, वो मेरी यूनिट में लगाया था और उसका जेसीआईसी मई था, उस प्लांट को लगाने में हमारी यूनिट की और हम लोगों की बहुत अहम भूमिका थी। तो उस वक्त सेना जल बहुत, क्योंकि पानी बहुत प्रदूषित आता था उस समय दिल्ली में और हमारी आर्मी इससे बहुत इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि आर्मी का जवान है, कभी राजस्थान में रहा, कभी जेएनके में रह रहा है, कभी आसाम में रह रहा है, कभी कहीं रह रहा है, तो दिल्ली का पानी उस समय बहुत प्रदूषित था। तो मधुलिका मैडम ने यह सोचा कि आर्मी के जवान को सेना जल प्रोवाइड कराया जाए और एक प्लांट लगाया जाए ताकि इनको शुद्ध पेयजल मिले। तो मेरा उसमें अच्छा योगदान रहा और मेरी फील्ड सर्विस को देखते हुए सह सेना अध्यक्ष वाइस चीफ साहब ने मुझे प्रशंसा पत्र से नवाजा और मुझे डेकोरेट किया।
अभी कोरोना काल में फिटनेस और इम्यूनिटी का जो महत्व है
जी मैम,
तो इसके लिए समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे?
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैम सबसे पहले आपको अपने फिजिकल और अपने खान पान पे ध्यान देना है। खान पान का इट मीन्स ये है कि ब्रेकफास्ट जरूर करना है, चाहे लाइट ब्रेक, कई लोगों को मैंने देखा है कि सीधा वो डायरेक्ट लंच करते हैं, आफ्टर देन वो डिनर कर लेते हैं।
हाँ।
तो चाहे वो बिजी रहते हैं, चाहे इस वजह से करते हैं, या सोचते हैं कि मैं कम खाऊंगा तो अच्छा फिट रहूंगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रेकफास्ट मस्ट बी कंपल्सरी, ब्रेकफास्ट करना ही करना है। कारण क्या है कि ब्रेकफास्ट करने से आपको जो कुछ जो 7-8 घंटे का जो गैप रहता है उसके अंदर आपको एनर्जी मिलती है और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सुबह एक हर नागरिक को एक नियम बनाना चाहिए कि सुबह फर्स्ट पीरियड वो वॉकिंग करे, चाहे 6 बजे करे चाहे 5 बजे करे, सूर्योदय से पहले उसको जरूर उठना चाहिए। यदि सूर्योदय से पहले यदि नहीं भी उठ पाते तो एटलीस्ट 6:30 बजे तक तो उठ के उसको बाहर वॉकिंग करने के लिए निकल जाना चाहिए। यदि वॉकिंग बाहर नहीं कर सकते हैं तो घर पे ट्रेडमिल वगैरह के द्वारा करें, अपनी फिजिकल फिटनेस रखें, योगा करें, कुछ नहीं कर सकते तो आप योगा करें। योगा का तो आजकल इतना ज्यादा क्रेज हो रखा है कि हर आदमी योगा को बहुत लाइक कर रहा है। योगा से जैसे अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया और सूर्य नमस्कार हो गया, ये 7-8 एक्सरसाइज यदि बंदा कर लेता है सुबह से शाम के बीच में तो हमेशा फिट रहेगा। और कोरोना काल लगभग प्रभु की कृपा से समाप्ति हो रहा है, अपने अंतिम स्टेज पर है, तो अभी कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रखें और अपना फिजिकल फिटनेस रखें और अपनी दैनिक क्रियाकर्म को करें और अपने अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाएं।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने खूब अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे श्रोताओं को।
जी मैम,
और ऐसी कोई
मैं अपने क्षेत्र के युवाओं को मैं और उनके गार्जियंस को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सेना में दो प्रकार से भर्ती होती है, तो सेना में जाने के लिए हर जगह वेबसाइट खुली है। रायपुर में ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस है, BRO जिसको बोलते हैं, जो नया रायपुर में है। यदि कोई चाहे तो मुझसे भी संपर्क कर सकता है। हमने यहाँ एक एकेडमी खोली है जिसमें 138 बॉयज और 32 गर्ल्स आ रही हैं, जो डेली फिजिकल हमसे ले रही हैं और एजुकेशन भी हम उनको दे रहे हैं कि उसके किस तरह से उनके सिलेबस आते हैं, किस तरह से पेपर आते हैं और कब कब उनकी वैकेंसी निकलती है, हम उनको गाइड करते हैं। यदि कोई मेरे से गाइडलाइन लेना चाहे तो मैं गाइडलाइन उनको हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। और उनके पेरेंट्स को भी मैं बताता हूँ कि आजकल सेना में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हो गई है, मेडिकल फैसिलिटी, राशन की फैसिलिटी, ट्रेवलिंग की फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी। बच्चों को, मेरे दो बच्चे हैं मैम आर्मी स्कूल में, मेरे दोनों बच्चे पढ़े हुए हैं, एक बेटा मेरा आर्मी में मेजर है और दूसरा बैंक में मैनेजर है, तो कोई किसी भी प्रकार की आर्मी में कोई दिक्कत नहीं है। इवन लेह लद्दाख तक में लोग आजकल क्वार्टर बन गए हैं, फैमिलीज आप कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को आर्मी में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। वो जमाना गया जब बोल्ट एक्शन राइफल हुआ करती थी, आजकल एक से एक आधुनिक हथियार हो गए हैं, केमिकल वार है, तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उतना ज्यादा रिस्क नहीं है सेना में, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी तनख्वाह है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं पेरेंट्स से, बच्चों से, कि अपनी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखते हुए आर्मी ज्वाइन करें। आर्मी में दो तरह से ज्वाइनिंग होती है मैडम, एक OR ज्वाइनिंग होती है अदर रैंक की सिपाही से, और एक होती है ऑफिसर की, जो NDA, CDS और टेक्निकल एंट्री और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री, ये सब के थ्रू आर्मी में आप डायरेक्ट ऑफिसर के लिए भी जा सकते हैं और जवान के लिए भी जा सकते हैं। जवान के लिए एज है, लिमिट है 17 to 23 और ऑफिसर के लिए है 18 to 23।
आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। हमारा मन तो कह रहा है कि आपसे और बात करें, लेकिन समय है कि मजबूर है। तो चलने से पहले मैं दो शब्द आपके लिए कहती हूँ। सिर्फ सोचने से मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। आप आज भी सबके लिए इतना कर रहे हैं, भगवान करे आगे और भी करते रहे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार,
जय हिंद,
जय हिंद।
सूबेदार मेजर गोवर्धन शर्मा से बातचीत की संगीता अग्रवाल ने अर्पा रेडियो के कार्यक्रम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।